सड़क से लेकर संसद तक के सियासत वाला शो एक बार फिर से आप देख रहे हैं यूपी बिहार के दिल से। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा और मेरे साथ मौजूद है हमारे एसोसिएट एडिटर सोनू कनौजिया। 2019 में लोकसभा का चुनाव है और इन्हीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, इन दोनों राज्यों की राजनीति गर्म है और दूसरे राज्यों की जो राजनीति है वो तो सातवें आसमान पर फिलहाल नजर ही आ रही है। लेकिन मौजूदा समय की बात की जाए, यूपी और बिहार इन दो राज्यों की बात की जाए, तो यहाँ पर जो राजनीति है वो कुछ अलग ही वजहों से गर्म है। यूपी की राजनीति राम मंदिर की वजह से गर्म होती नजर आ रही है और बिहार की अगर राजनीति की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो कुशवाहा है वह अलग ही चिंता वहाँ पर बढ़ाए हुए हैं, वहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा अलग ही चिंता बढ़ाए हुए हैं। वहाँ पर नीतीश कुमार की बात करें तो वह गठबंधन में सीटों को लेकर शामिल होंगे या नहीं, या कुल मिलाकर देखें तो वहाँ पर भी एक अलग तरह से एक राजनीति फिलहाल होती हुई नजर आ रही है। पहले यूपी की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बिहार की बात करेंगे। सुनो जी, देखिए यूपी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं भारी तादाद में, उनकी यह मांग थी और इसलिए उन्होंने सरकार को बदला वहां पर
जी,
कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए, लोगों को रोजगार मिले। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब तक यूपी सरकार में, खासतौर पर अगर बीजेपी के आने के बाद की अगर बात की जाए, तो रोजगार के अवसर बन पाए हैं? क्या लगता है आपको चुनाव में बीजेपी किन मुद्दों को सामने रखते हुए खासतौर पर यूपी में वोट मांगेगी? क्या राम मंदिर को सामने रखा जाएगा क्या, और राम मंदिर का एक अहम मुद्दा होगा लोकसभा चुनाव में यूपी के लिए?
देखिए, राम मंदिर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अहम मुद्दा रहा ही है। देखिए, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की, तो ये दुर्भाग्य रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता का कि वो हमेशा से डेवलपमेंट से अछूते रहे हैं। यहाँ पर कई इतने सारे रिसोर्सेस हैं, जगह है, सब कुछ है, बिहार को सक्षम और यूपी को सक्षम बना दिया जाता अब, लेकिन यहाँ पर इतने, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने देश को उत्तर प्रदेश ने दिया, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये फेलियर है उत्तर प्रदेश में, जितनी भी आज तक सरकार आई है उन सभी का। एक उम्मीद की किरण देखी गई थी अखिलेश यादव की सरकार के वक्त, जब अखिलेश यादव ने काम करना शुरू किया था और अखिलेश यादव डेवलपमेंट कर रहे थे, लेकिन 5 साल बाद उनकी सरकार चली गई और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई हुई है। हालांकि वादे तो बहुत कुछ किए हैं, लेकिन देखना यह जरूरी है कि आने वाले कुछ दिनों में ये वादे कितने पूरे हो सकते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ को भी पूरी तरह से हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी सरकार अभी अभी आई है, और इसके अलावा अगर बात करें तो वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि उत्तर प्रदेश में कई सारे काम नहीं हुए हैं। अब जिस तरह से देखा गया है पिछले 10 सालों में, पिछले 7-8 सालों में जब से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से ही लगातार उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में काम होना शुरू हुआ है। जो सड़कें हैं, सड़कें अच्छी खासी बनने लग गई हैं। अभी अगर बात करें तो सैमसंग की एक फैक्ट्री भी लगी हुई है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश धीरे धीरे उस प्रगति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जो स्पीड होनी चाहिए थी वो स्पीड देखने नहीं मिल रही है। वादे किए जाते हैं लेकिन उस वादों को बरगला दिया जाता है। अब विकास का मॉडल हुआ करता था बीजेपी का, लेकिन अब राम मंदिर के आसपास पूरी राजनीति जो है वो घूम रही है। बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार को हमेशा से ही पिछड़ा राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए, पिछड़ा राज्य का दर्जा देना अलग बात है, लेकिन वो जो सोच है वो बदलना जरूरी है। मुख्यमंत्री हैं वहाँ के नीतीश कुमार, नीतीश कुमार को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो केंद्रीय मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, इतना सब कुछ एक्सपीरियंस है, लेकिन आज भी बिहार में उस तरह के रोजगार के अवसर नहीं है। बिहार उस तरह से डेवलपमेंट की कगार पर नहीं जा रहा है। बिहार जो है वो खुद को गरीब राज्य बताता है, केंद्र सरकार से जो है मदद मांगता है। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का ये फेलियर है, नीतीश कुमार का ये बिहार में फेलियर है। उन्हें पिछले 10 सालों से अगर देखा जाए तो उनकी जरूरत थी कि वो बिहार में एक अच्छी, बिहार को एक अच्छी मेगा सिटी बना सकते थे बिहार में कई सारे, लेकिन नहीं हुआ। तो ये एक उसे कहते हैं कि जो इच्छा शक्ति होती है उसकी कमी हमें यहाँ पर देखने मिल रही है, और जिसका सीधा सीधा नुकसान उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता को उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ नेताओं को ब्लेम नहीं करूँगा, बल्कि कई उधर के जो लोग हैं उनको भी मैं ब्लेम करना चाहूँगा कि हमको सिर्फ और सिर्फ नेताओं पर नहीं डिपेंड होना चाहिए, हमको कुछ करना चाहिए। उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर हर घर में एक नेता, एक दरोगा और एक IAS ऑफिसर बनता है, तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से ऊपर आना चाहिए और प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट नौकरी है उनके बारे में देखना चाहिए, उद्योगों के बारे में देखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी उत्तर प्रदेश की जनता को सोचना चाहिए। अगर वो जब तक नहीं सोची, मुझे लगता है नहीं है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का प्रगति हो पाएगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो इच्छा शक्ति की कमी नेताओं नहीं बल्कि वहाँ की आम जनता में भी देखने मिल रही है।
देखिए, हम अगर हम देश के दूसरे राज्यों की अगर बात करें, चाहे फिर वो केरल की हम बात कर रहे हैं, चाहे गुजरात की बात करें, या महाराष्ट्र की बात करें, या दूसरे किसी राज्य की हम अगर बात करें, तो वहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट हम देखते हैं, जो भी विकसित राज्य होता है वहाँ पर, देखिए वहाँ पर जो औद्योगिकरण वहाँ पर भारी तादाद में आता है, कंपनियाँ आती हैं वहाँ पर, फैक्ट्रीज लगाती हैं, मजदूरों को काम मिलता है, और फिर उस हिसाब से अगर कहें तो राज्य का विकास होता है। केरल जैसे राज्य में शिक्षित लोग अधिक हैं, बेंगलोर में अगर देखें आईटी हब वहाँ पर बन गया है, मुंबई की डिमांड है, दिल्ली की डिमांड है, कलकत्ता की डिमांड है। क्या लगता है आपको, क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के, अगर हम इन राज्यों की अगर खासतौर पर बात करें, लखनऊ या पटना की अगर हम यहाँ पर बात करें, क्या लगता है वहाँ पर इस तरह के अगर हम कहें तो कंपनीज नहीं लग पा रही है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ हाल ही में उन्होंने जो बिजनेसमैनों से मिलने का जो सिलसिला शुरू किया था, राज्य में बिजनेसमैन को लेकर आ रहे थे, लेकिन वो भी पूरा सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
देखिए, सबसे बड़ी कमजोरी अगर किसी स्टेट की होती है तो उसका एजुकेशन सिस्टम कितना कमजोर है उससे पता चलता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर बात करूं तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से लड़खड़ाया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ के लोग शिक्षित नहीं है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार से अच्छे अच्छे लेखक, अच्छे अच्छे कवि और अच्छे अच्छे लोग निकले हैं, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए एजुकेशन की, वो व्यवस्था आज भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। बिहार में अगर देखा जाए तो नकल का सिलसिला इस तरह से चलता है कि पढ़ाई की कुछ वैल्यू नहीं है। तो जब तक जहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं आएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर स्किल जो लोग हैं वो पैदा होंगे। तो अगर आपके राज्य को आपको अच्छा खासा डेवलप बनाना है और स्किल्ड लोगों का बनाना है, तो मुझे लगता है कि आपको आपका एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा, और चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के या फिर सरकारी स्कूल हो, आपको हर जगह आपके स्कूल को अच्छा और स्ट्रांग बना होना होगा, ताकि आपके स्कूल से और कॉलेजेस से जो बच्चे निकलेंगे वो बच्चे अच्छे खासे इंटेलेक्चुअल बनेंगे, और अच्छी खासी जो अगर बात करें तो कंपनीज में उनको जॉब मिलेगी, तब जाके बाहर से भी कंपनीज आपके राज्य में आएगी। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार को सबसे पहले अपने
बिल्कुल
एजुकेशन सिस्टम पर काम करना होगा, एक अच्छा स्ट्रांग एजुकेशन सिस्टम लाना होगा जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, और जो जो स्किल डेवलपमेंट होता है वो करना चाहिए। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार को करनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जो वहाँ के बच्चे हैं वो अच्छे खासे शिक्षित हों और उन्हें भी अच्छी खासी कंपनियों में जॉब लगे। देखिए, एक माइंडसेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आपका माइंडसेट वैसा नहीं है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट वैसा नहीं है, तो आप डेवलपमेंट की राह पर नहीं चल पाओगे। तो मुझे लगता है कि उस तरह की एक इच्छा शक्ति सरकार ने लानी चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम को आप जितना बेटर करोगे उतने अच्छे स्किल्ड जो विद्यार्थी हैं वो आपके यहाँ से निकलेंगे। चाहे अगर बात कर लो, आप केरला की बात कर लो, तमिलनाडु, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, इन सब जगहों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उनका वो बहुत ज़्यादा
प्राथमिक मूलभूत सेवाएं
जी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा एक नींव है जहाँ पर आप आने वाले फ्यूचर को नर्चर कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सरकार है उन्हें सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम पर काम करना चाहिए, और बच्चों को किस तरह से शिक्षित किया जाए, किस तरह से इंटेलेक्चुअल बनाया जाए, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चे अच्छे खासे उन्हें अगर एजुकेशन मिलता है तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी जो स्किल्ड जो होगा, स्किल डेवलपमेंट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और फिर जब जहाँ पर ज़्यादा स्किल्ड लोग आते हैं वहाँ पर जाहिर सी बात है कंपनियाँ आएंगी। हैदराबाद में क्या था, हैदराबाद में भी इसी तरह का डेवलपमेंट हुआ, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ, वहां पर आईटी के क्षेत्र में लोगों का इंटरेस्ट हुआ, और फिर वहां पर आज आईटी हब माना जाता है। पुणे में क्या हुआ, पुणे में भी इसी तरह की चीजें हुई है। तो मुझे लगता है कि सरकार को अपने कदम बढ़ाने होंगे ताकि एजुकेशन सिस्टम और स्ट्रांग हो, और एजुकेशन सिस्टम को वो अच्छी तरह से आगे लेकर जाए, ताकि आने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर और उस राज्य का फ्यूचर अच्छा हो सके।
चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में यूँ तो राजनीति होती ही रहती है, राजनीति की कई खबरें आप लगातार देखते हैं, लेकिन मौजूदा समय की अगर बात करें, करंट अगर सिनेरियो की बात करें, तो ऐसे कुछ जो मुद्दे हैं जिसके बारे में हमने आज चर्चा की, डिस्कस किया कि इस वजह से आजादी के इतने सालों के बावजूद भी देश में कई प्रधानमंत्री और तमाम बड़े बड़े मंत्री संतरी देने के बावजूद भी आज भी यह दो राज्य अगर हम कहें तो आर्थिक विकास के मामले में उतना अधिक सक्षम यहाँ पर होता हुआ नहीं नजर आया है। अगर कहें इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में धीरे धीरे ये दो राज्य अब धीरे धीरे ही सही ये भी उभरते हुए सामने आ रहे हैं, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं जितनी स्पीड से दूसरे राज्य होते हुए यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मेडिकल की सेवाएं उतनी अच्छी तरीके से अभी तक डेवलप यहाँ पर नहीं हो पाई है, पुलिसिंग को अगर दुरुस्त करना होगा। बहरहाल 2019 में चुनाव है, लोकसभा के चुनाव, और एक बार फिर से इन्हीं सारे मुद्दों को दुरुस्त करने की बात को लेकर बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे और यहाँ के जो रहवासी हैं उनके सामने आया जाएगा और उनसे वोट मांगे जाएंगे। लेकिन बहरहाल क्या लगता है आपको 2019 में क्या होगी देश की सूरत? उत्तर प्रदेश और बिहार वासी क्या सोचते हैं, किस ओर होगा उनका झुकाव? जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। बन रही HW न्यूज के साथ, नमस्कार।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।